أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد میرے پیارے دوستو بھائیوں، میں ایک بار پھر احکام پر آدھارت کچھ مسئلوں کو لے کر آپ کے سامنے اپستھت ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے کے پروگرام میں تیمم کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے، اور ہم نے اس پروگرام میں تیمم سے سمبندھت کچھ مسئلوں کو آپ کے سامنے بتایا اور ان کے بارے میں بحث کی۔ اسی بات چیت کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ کے سامنے تیمم سے سمبندھت کچھ اور مسئلوں کو بیان کریں گے۔ تیمم سے سمبندھت مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کو اس بات کا شک ہو رہا ہو، اس کو سندیہ ہو رہا ہو کہ اگر وہ غسل یا وضو کرے گا تو غسل اور وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے سمے بچے گا یا نہیں بچے گا، یعنی نماز کا انتم سمے ہے، نماز قضا ہونے والی ہے، کچھ سمے بچا ہے، اب وہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں غسل یا وضو کروں گا تو کیا میرے لیے اتنا سمے بچے گا کہ میں نماز پڑھ سکوں اس سمے کے اندر یا نہیں بچے گا۔ اگر اس کو اس بات کا سندیہ ہو رہا ہے کہ سمے نکل جائے گا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ وضو یا غسل کو چھوڑ دے اور وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرے، یعنی تیمم کرنے کے بعد اپنی نماز کو اس تیمم کے مادھیم سے انجام دے۔ اگر انسان کے پاس کیول اتنا سمے ہو، یعنی نماز کا انتم سمے ہے، کیول اتنا سمے ہو کہ اگر وہ وضو یا غسل انجام دے اور تو وضو یا غسل انجام دینے کے بعد وہ نماز کو اس پرکار پڑھ سکتا ہو کہ نماز کی مستحب چیزوں کو چھوڑنا پڑے، یعنی سمے اتنا کم ہے کہ اگر نماز کو پڑھنا چاہتا ہے وضو یا غسل کے ساتھ ساتھ تو اس کو مثلا اذان چھوڑنی پڑے گی، اقامت چھوڑنی پڑے گی، قنوت چھوڑنا پڑے گا، اگر اس پرکار کی استھتی پیش آ جائے، اگر ایسی صورتحال ہو تو انسان کو چاہیے کہ وضو یا غسل کر لے اور اس کے بعد نماز کو ان کی مستحب چیزوں کو چھوڑتے ہوئے انجام دے۔ اسی میں ایک مسئلہ آگے بڑھ کے بھی آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اتنا سمے کم ہو کہ مستحب چیزوں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اس کو سورہ حمد کے بعد دوسرا سورہ بھی چھوڑنا پڑے۔ مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ اگر سمے اتنا کم ہے کہ اذان اور اقامت و قنوت کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ سورہ کو بھی چھوڑنا پڑے تو انسان کو چاہیے کہ وہ وضو یا غسل جو اس کے اوپر واجب ہے اس کو انجام دے، اس کے بعد اس نماز کو وہ پڑھے، یعنی اس پرکار کی اذان اور اقامت کو چھوڑ دے، قنوت کو چھوڑ دے، اس کے بعد سورہ کو بھی چھوڑ دے، صرف سورہ الحمد کو پڑھ کے نماز کو اپنی انجام دے۔ اس پرکار انسان کو چاہیے کہ اپنی نماز کو پڑھے۔ اس میں ایک مسئلہ جو تیمم کے صورت میں، تیمم کے بارے میں بہت زیادہ پیش آتا ہے اور الگ الگ پرکار سے یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے، کبھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے، کبھی خود فون کے ذریعے سے وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے یہ مسئلہ بہت پوچھا جاتا ہے، وہ یہ کہ کبھی کبھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس پانی وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن کسی کارنوش وہ غسل نہیں کر سکتا ہے، جیسے کہ وشیش کر وہ لوگ جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، کہ انسان جوائنٹ فیملی میں رہ رہا ہے، فیملی بڑی ہے، وہ مجنب ہو گیا، اب جو حمام ہے وہ دور ہے، تھوڑا گھر کے دوسرے کونے میں دور ہے، یا اس کو باہر نکلنے میں شرم محسوس ہو رہی کہ اگر وہ غسل کرنے کے لیے جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو کیا یہ شرم کا ہونا اور یہ حمام کا دور ہونا کیا تیمم کے لیے جائز بن جائے گا؟ یعنی کیا انسان کی شرم اور حمام کا دور ہونا تیمم کو صحیح قرار دے گا؟ تو مجتہدین اس بارے میں کہتے ہیں کہ شرم کا ہونا اور حمام کا دور ہونا تیمم کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، یعنی اگر انسان مجنب ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وضو یا غسل، اگر مجنب ہو گیا تو غسل کرے اور یا کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا ہے تو وضو کرے، तयम्मुम ऐसी सूरत में नहीं कर सकता है। इसके बाद जो मसला आता है वो ये है कि इंसान अगर तयम्मुम करना चाहता है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इंसान तयम्मुम कर सकता है। तो हमारे मुज्तहिदीन ने कुछ चीज़ें बताई हैं जिनके ऊपर तयम्मुम करना सही है, जिनको हम अभी आपके सामने पेश कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर तयम्मुम करना सही है वो है मिट्टी। मिट्टी किसी भी प्रकार की हो उसके ऊपर तयम्मुम किया जा सकता है, बस फ़र्क शर्त ये है कि वो मिट्टी पवित्र हो। दूसरी चीज़ ये है कि रेत या बालू, अगर रेत और बालू है तब भी उसके ऊपर तयम्मुम किया जा सकता है। और तीसरी चीज़ पत्थर, पत्थर किसी भी प्रकार का हो, जैसे संगमरमर हो, काला पत्थर हो, या आम पत्थर हो, या इसी प्रकार कोई भी पत्थर हो उसके ऊपर तयम्मुम किया जा सकता है। लेकिन हाँ, वो पत्थर जिनसे आभूषण बनाए जाते हैं, जिनको अंगूठियों में प्रयोग किया जाता है, जैसे अकीक का पत्थर है, फिरोज़े का पत्थर है, इस प्रकार के पत्थर जो होते हैं उनके ऊपर तयम्मुम नहीं किया जा सकता है। इसी में एक बहस और भी आती है जिसके बारे में हमारे मुज्तहिदीन के फतवों में मतभेद पाया जाता है। वो ये है कि क्या ईंट के ऊपर या पकी हुई मिट्टी के ऊपर तयम्मुम किया जा सकता है या नहीं। तो कुछ हमारे कुछ सम्मानीय मुज्तहिदीन वो हैं जो ये कहते हैं कि पकी हुई ईंट और पकी हुई मिट्टी के ऊपर भी तयम्मुम करना सही है, लेकिन हमारे दूसरे कुछ मुज्तहिदीन हैं जो कहते हैं नहीं, इनके ऊपर तयम्मुम नहीं किया सकता है। लिहाजा हमारा वो दर्शक जो इस मसले को देख रहा है उसको चाहिए कि इस मसले में वो अपने मुज्तहिद के पास जाए, अपने मुज्तहिद तौज़ील मसाइल को देखे और उससे संपर्क करे कि वो इस मसले में क्या फतवा देता है। तो ये वो चीज़ें हुई जिनके ऊपर तयम्मुम करना सही है। अब जो आगे बात आती है, जो इसके बाद का मरहला आता है, वो ये है कि तयम्मुम किस प्रकार किया जाए, तयम्मुम करने का तरीक़ा क्या है। तो हमारे मुज्तहिदी ने तयम्मुम करने का तरीक़ा बताया है। वो कहते ये हैं कि इंसान गुस्ल या वज़ू की नियत से तयम्मुम करे, यानी पहले शर्त ये है कि तयम्मुम करे। उसके बाद उसको चाहिए कि अपने दोनों हाथों को ऐसे ले, दोनों हाथों को उस चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर तयम्मुम करना सही है। जैसे कि अगर हम इस मसले में बात करें, जैसे मिट्टी, अगर इंसान के सामने मिट्टी रखी हुई है तो उसको चाहिए कि अपने दोनों हाथों को एक साथ मिट्टी के ऊपर यूँ मारे। एक साथ मिट्टी के ऊपर मारने के बाद दोनों हाथों को उठाए, हाथों को उठाने के बाद अपनी पेशानी से लगाए, यहाँ इस यूँ यहाँ से पेशानी से लगाने के बाद पूरी पेशानी यानी यहाँ से यहाँ तक उसको मस करे, और नाक का ये हिस्सा, नाक का ये हिस्सा भी उसको चाहिए कि मस हो। और यहाँ पर एहतियात कहा यह गया है कि ये जो भावों हैं, ये जो बाल हैं, इनके ऊपर भी उसको मस करे और हाथों को फिराए। उसके बाद जब ये ऊपर का हिस्सा कर चुका तो उसके बाद उसको चाहिए कि अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ को अपने गट्टों से लेके उंगलियों तक मस करे, यानी यूँ कर रहा है यूँ। उसके बाद दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ को इधर से यूँ करे। इसी के बाद हमारे कुछ मुज्तहिदीन हैं जो एक बात और कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर इंसान तयम्मुम कर रहा है तो पहली बार जब उसने अपने हाथ को मिट्टी के ऊपर मारा है तो पहली बार जैसे हमने भी आपके सामने तरीक़ा करके दिखाया है इस प्रकार करे, उसके बाद एक बार और मिट्टी के ऊपर हाथ को मारे, उसके बाद बाएं हाथ को दाहिने हाथ पर यूँ करे मस करे, और उसके बाद दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर यूँ मस करे। तो ये वो तरीक़ा है जिसको हमारे मुज्तहिदीन ने बताया इस प्रकार तयम्मुम करना चाहिए। तयम्मुम चाहे वो वज़ू के बदले हो, चाहे गुस्ल के बदले में हो, तरीक़ा एक ही है, उसके तरीक़े में कोई भी अंतर नहीं है। इसके बाद एक बात और भी आती है कि इंसान तयम्मुम क्यों करता है, तयम्मुम या वज़ू के बदले किया जाता है या गुस्ल के बदले किया जाता है। तो जब इंसान तयम्मुम वज़ू या गुस्ल के बदले में कर रहा है तो उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर तयम्मुम वज़ू के बदले किया गया है तो अगर कोई भी ऐसा कार्य वो कर देता है जिसके माध्यम से वज़ू टूट जाया करता था, जैसे अगर उसने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद वो पेशाब कर लेता है या पखाना कर लेता है या उसकी रिया खारिज हो जाती है, अगर इस प्रकार का कोई भी कार्य कर लेता है तो उसका वज़ू बातिल हो जाएगा। उसके बाद अगर उसको नमाज़ पढ़नी है तो या वो पानी के ज़रिए से वज़ू करे या दोबारा तयम्मुम करे, तब वो नमाज़ को पढ़ सकता होगा। इसी प्रकार गुस्ल के मामले में भी यही सेम मसला है कि अगर इंसान गुस्ल के बदले में तयम्मुम करता है तो अगर कोई ऐसा मसला पेश आ जाता है, कोई ऐसा कार्य कर लेता है जिसके माध्यम से गुस्ल टूट जाया करता था, मसलन उसने गुस्ल के बदले में तयम्मुम किया था, बाद में किसी मुर्दे को छू लिया, उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया तो ये जो पहले तयम्मुम कर रखा था वो तयम्मुम टूट जाएगा, या मुजनिब हो गया, अगर मुजनिब हो गया है तो उसका गुस्ल, उसका तो तयम्मुम था गुस्ल के बदले में, वो बातिल हो जाएगा, उसको दोबारा गुस्ल या तयम्मुम करना होगा। इस मामले में इस बात का ध्यान रखना होगा, यानी हर वो कार्य जो वज़ू या गुस्ल को तोड़ देता है वो कार्य वज़ू या गुस्ल के बदले किए हुए तयम्मुम को भी तोड़ देगा। एक बात और भी यहाँ पर यह है कि इंसान का तयम्मुम उस वक्त सही होगा, उस समय सही होगा जब वो तयम्मुम विवशता के कारण करे, यानी मजबूरी हो, जैसे पानी न मिल रहा हो या बीमारी का डर हो, इस प्रकार की अगर कोई मजबूरी है या समय निकला जा रहा है नमाज का, अगर इस प्रकार की कोई मजबूरी है तब अगर उसने तयम्मुम किया तब उसका तयम्मुम सही होगा। लेकिन अगर बिना किसी विवशता के, बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी समय के तंगी के उसने तयम्मुम कर लिया है तो उसका ये तयम्मुम सही नहीं होगा, और बल्कि उसको जो है वज़ू या गुस्ल उसके बदले में करना होगा। उसके बाद जो बात आती है कि तयम्मुम के सही होने की कुछ शर्तें हैं, हमने आपके सामने बयान किया कि वो तयम्मुम करेगा कैसे, किस चीज़ के ऊपर करेगा, लेकिन जब तयम्मुम कर रहा है तयम्मुम के सही होने के लिए कुछ शर्तें हैं कि उन शर्तों का ध्यान रखना एक तयम्मुम करने वाले के लिए आवश्यक है। अगर इन शर्तों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो तयम्मुम उसका बातिल होगा। सबसे पहली शर्त तयम्मुम करते समय ये है कि जिन अंगों पर तयम्मुम करते समय मसा किया जाता है, यानी मिट्टी छूने के बाद हाथ लगाया जाता है, उन अंगों का पाक होना, पवित्र होना अनिवार्य है। यानी क्या? यानी पेशानी पवित्र हो, हाथ का ये हिस्सा पवित्र हो, इन हिस्सों पर अगर कोई अपवित्रता, कोई नजासत लगी हुई है तो इंसान के लिए आवश्यक ये है कि पहले उन अपवित्रता, उन नजासतों को हटाए और उसके बाद तयम्मुम करे। और दूसरी बात यह है कि जिन चीज़ों पर तयम्मुम कर रहा है वो मुबाह हों और वो चीज़ें खुद भी पवित्र हों। जैसे कि हमने आपको वज़ू और गुस्ल के भाग में भी ये बताया था कि मसलन जिस पानी से वज़ू या गुस्ल कर रहा है वो पानी मुबाह हो, इसी प्रकार जिस मिट्टी पर, जिस पत्थर पर या जिस चीज़ के ऊपर तयम्मुम कर रहा है इंसान वो चीज़ मुबाह हो और वो चीज़ पवित्र भी हो। यानी अगर मिट्टी पर तयम्मुम कर रहा है तो मिट्टी पवित्र हो, नजिस मिट्टी के माध्यम से अगर तयम्मुम करना चाह रहा है तो इंसान का तयम्मुम सही नहीं होगा। और इसी में एक चीज़ और भी है कि तर्तीब का ध्यान रखे, क्रम अनुसार करे। यानी क्या? यानी मतलब यह है, इसका तात्पर्य यह है कि पहले माथे को छुए, नाक का भाग छुए, उसके बाद दाहिने हाथ के ऊपर मसा करे, उसके बाद बाएं हाथ के ऊपर मसा करे। इस क्रम के अनुसार अगर इंसान कर रहा है तो उसका तयम्मुम सही होगा। अगर इस क्रम में कोई दोष पैदा हो जाता है, ये क्रम टूट जाता है तो उसका तयम्मुम सही नहीं होगा। इस क्रम के बाद एक और चीज़ आती है जिसको हम मवालात कहते हैं। मवालात का मतलब हमने आपको गुस्ल और वज़ू के भाग में बताया था, यहाँ फिर बता रहे हैं, यानी एक नियमित अंतराल के बाद कार्य को अंजाम दिया जाए। यानी अगर इंसान कोई तयम्मुम कर रहा है तो उन अपने कार्यों को इस अंतराल के साथ, इस नियमित अंतराल के साथ कार्य को अंजाम दे कि देखने वाला ये कहे कि हाँ ये इंसान वाकई तयम्मुम कर रहा था। अगर इंसान का ये अंतराल बहुत लंबा हो जाता है, इसकी अवधि ज़्यादा हो जाती है कि देखने वाला ये कहे कि नहीं ये तयम्मुम नहीं कर रहा था, तो ऐसी सूरत में उसका तयम्मुम बातिल होगा। उसके लिए आवश्यक ये है कि तर्तीब के साथ साथ मवालात का भी ध्यान रखे। इसके बाद तयम्मुम के भाग में कुछ और बातें हैं जो हम आपको बयान करेंगे, लेकिन अपने दूसरे प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।